आधी रात बीती थी। कायरा विनाया को अपनी आगोश में समेटे सो रहा था। उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जिसे पहले उसने नींद में नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज लगातार आती रही तो कायरव की नींद में खलल पड़ने लगी। गहरी नींद में होने की वजह से उसके दिमाग को सेंस में लौटने में थोड़ा वक्त लगा, और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये इनाया की आवाज है, उसने झटके से अपनी आंखें खोल दीं। जैसे ही नजर इनाया पर गई, वो बुरी तरह घबरा गया। इनाया की आंखें बंद थीं और वो नींद में ही कराह रही थीं, चेहरे पर दर्द में घुली बेचैनी। ऐना, क्या हुआ? ऐना, तुम ठीक हो? कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? कायरव परेशान सा सवाल कर रहा था, लेकिन नींद में इनाया को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। ऐना, कायरव ने इनाया के गाल को छुआ और उसके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने तुरंत इनाया के माथे, उसके हाथ और गले को छू कर देखा। इनाया का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, मतलब उसे फिर से फीवर चढ़ रहा था, और नींद में वो बेचैनी से अपने पेट और कमर के निचले हिस्से को सहला रही थी। शायद उसे दर्द हो रहा था। ओ गॉड, इसे तो फिर से फीवर हो गया है। रात को ही मेडिसिन ली थी, अब दोबारा मेडिसिन देना भी ठीक नहीं होगा। कायरव खुद में बड़बड़ाया। नज़र इनाया के बढ़े हुए पेट पर पड़ी। प्रॉब्लम यही थी कि वो प्रेग्नेंट थी। ज़्यादा दवाइयाँ लेने पर इफ़ेक्ट सीधे बच्चे पर पड़ता। कायरव जल्दी से किचन में गया, बड़े बाउल में ठंडा पानी लाया, कॉटन का छोटा टॉवल लिया और उसे पानी में डालकर अच्छे से निचोड़ने के बाद इनाया के सर पर रख दिया। इनाया अब हल्का हल्का कांपने भी लगी थी, शायद बुखार बढ़ने की वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। कायरव ने रूम का टेम्परेचर एडजस्ट किया, एक और ब्लैंकेट निकालकर इनाया को उससे अच्छे से कवर कर दिया और खुद उसके पास बैठा और उसके पेट को धीरे धीरे अपनी हथेली से सहलाने लगा। इनाया कांप रही थी, कराह रही थी, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, नींद में भी बेचैन थी। कायरव कभी ठंडे पानी की पट्टी बदलता, कभी उसके हाथ पैर को पोंछता, कभी उसके कमर और पेट को सहलाता तो कभी उसके सर पर हाथ फेरता। इनाया गहरी नींद में थी और कायरव की नींद, चैन, उसका सुकून सब उड़ चुका था। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ इनाया की फ़िक्र थी और वो परेशान सा बस उसे राहत पहुँचाने की कोशिशों में लगा था। देखते देखते एक घंटे से ऊपर का वक्त हो गया था। कायरव कई बार पानी चेंज कर चुका था। इनाया पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी की जगह सुकून बिखरा था। अब वो गहरी नींद में थी। अब वो ना कांप रही थी और ना ही कराह रही थी। ब्लैंकेट में दुबकी आराम से सो रही थी। कायरव ने एक बार फिर अपनी हथेली से उसके माथे और गर्दन को छू कर देखा। ठंडे पानी की पट्टी करने की वजह से माथा बिल्कुल ठंडा था, लेकिन गर्दन अब भी थोड़ा गर्म लग रहा था। बुखार अब काफ़ी हद तक उतर गया था। इनाया भी शांत थी, लेकिन अभी भी फीवर पूरी तरह उतरा नहीं था। कायरव ने भीगे टॉवल से इनाया के चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर, पेट सबको पोंछा। फिर उसे ठीक से कवर किया और उसके माथे पर भीगा टॉवल रखकर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगा। सुबह के 5 बज रहे थे। वो जरा सी देर सोया था, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। वो बस टकटकी लगाए इनाया को देखे जा रहा था। चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में कई एहसास छिलमिला रहे थे। आज तो मैं हूँ तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन तब तो मैं नहीं था। तुमने कहा था कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही तुम्हें किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता रहा है। कितना कुछ सहा होगा तुमने अकेले, कितना कुछ फेस करना पड़ा होगा तुम्हें। काकी और मानव तुम्हारे साथ थे, लेकिन मैं तो नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास। तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मुझे खबर तक नहीं थी। उस कंडीशन में तुमने अपनी और हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझसे दूर रहीं, कैसे किया होगा तुमने ये सब। कितनी मजबूर थी तुम कि मुझे एक बार कॉल करके ये तक नहीं बता सकी कि तुम कहाँ और किस कंडीशन में हो। और ये सब डैड की वजह से हुआ। जो टाइम हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त हो सकता था, उन्होंने उसे सबसे बड़ा ट्रॉमा बना दिया। इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उसकी कीमत चुकानी होगी उन्हें। वो मेरे डैड हुए तो क्या हुआ। जो गुनाह उन्होंने किए हैं, उसकी सज़ा तो उन्हें भुगतनी ही होगी। कायरव के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन मौजूद थे। दुख, गिल्ट, पछतावा, गुस्सा, नफ़रत, दर्द, जुनून और सख्ती। जैसे मन ही मन वो फैसला कर चुका था कि आगे क्या करना है। सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन रूम में अभी भी रात सा अंधेरा कायम था। सारी लाइट्स बंद थी, पर्दे लगे हुए थे, पर बाहर से आती सूरज की किरणें उन झीने पर्दों के बीच से फिसलकर अंदर कमरे में अपनी झिलमिलाती रोशनी बिखेरने की पूरी कोशिश कर रही थीं। इनाया के चेहरे पर लगातार तेज रोशनी पड़ने से उसने खींचते हुए अपनी आंखें खोली। आंखों को मसलते हुए अजीब सा मुंह बनाया। कितने बज गए जो इतनी रोशनी हो गई। इनाया ने बड़बड़ाते हुए निगाहें वॉल क्लॉक की तरफ घुमाई और जैसे ही टाइम देखा, उसकी आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं। हाँ, 9 बज गए, मैं इतनी देर तक सोती रही और कायरव ने मुझे उठाया भी नहीं। कायरव का ख्याल आते ही इनाया ने फौरन अपना सर बाईं तरफ घुमाया, जहां बीती रात कायरव सोया था, और अब उसे अगला झटका लगा। कायरव उसके सर के पास हेडड्रेस से टिककर बैठा था। उसका सर एक तरफ को लुढ़का हुआ था और घनी पलकें गालों पर बिखरी थीं। चेहरा शांत था, लेकिन माथे पर बिखरे बालों के पीछे से अभी भी कुछ सिलवटें बाहर झांक रही थीं। उसका एक हाथ अभी भी इनाया के सर पर था। इनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बड़ा करके कुछ देर आश्चर्य से उसे देखती रही। फिर जैसे ही उठने लगी, उसका ध्यान खुद पर डले डबल ब्लैंकेट पर गया। उसकी भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। इनाया किसी तरह सहारा लेकर उठकर बैठ गई। अब इसकी नजर नाइट स्टैंड पर रखे बाउल पर गई, जिसमें टॉवल रखा हुआ था। इनाया ने नजरें घुमाकर खुद पर पड़े डबल ब्लैंकेट, उस बाउल और फिर बगल में बैठे बैठे सो रहे कायरव को देखा। क्या रात को मुझे फिर से फीवर हो गया था? इनाया ने फुसफुसाते हुए खुद से सवाल किया, फिर अपनी हथेली से अपने माथे और गर्दन को छूकर चेक किया। अब वो बिल्कुल ठीक थी, शरीर बिल्कुल ठंडा था। मेरी बॉडी तो बिल्कुल ठंडी है, लेकिन ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि रात को मुझे फीवर हुआ था और मैंने कायरव की नींद खराब कर दी। पता नहीं कब उठा, कितनी देर तक मेरा ख्याल रखने के बाद खुद कितने बजे सोया है कि अभी भी सो ही रहा है। बेबी, हम डैड को बहुत तंग करते हैं, पूरे दिन ऑफिस का काम, मीटिंग और उस पर हमारी चिंता। कितने थक गए होंगे वो, हमने उन्हें रात को ठीक से सोने भी नहीं दिया। इनाया ने अपने बढ़े हुए पेट को अपनी हथेली से छुआ और मायूसी से बोली, फिर नजर घुमाकर कायरव को देखा, जो शायद इस वक्त गहरी नींद में था, इसलिए उसे इनाया के उठने का एहसास भी नहीं हुआ था। इनाया धीरे से उठकर कायरव के पास आई, उसके माथे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाया। सॉरी, आई नो मैं बहुत परेशान करती हूँ तुम्हें, इंटेंशनली कुछ नहीं करती, लेकिन हमारे वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम कुछ कहते नहीं, लेकिन मैं सब समझती हूँ, आई एम सॉरी। इनाया आगे बढ़ी और अपने सॉफ्ट होंठ उसके माथे पर रख दिए। आई लव यू, वी लव यू सो मच। इनाया ने हथेली से अपने बढ़े हुए पेट को सहलाया और मुस्कुरा दी। इनाया ने कायरव को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और जैसे ही बेड से उतरने लगी, उसका हाथ नाइट स्टैंड पर रखे शोपीस पर लगा और अगले ही पल तेज आवाज के साथ वो शोपीस फर्श पर जा गिरा, टूटकर बिखर गया। इनाया ने घबरा कर अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। वही आवाज कायरव के कानों में भी पड़ी और उसकी नींद एक झटके में खुल गई। हड़बड़ाके हुए उसने नजरें घुमाई और होठों से बस एक शब्द बाहर निकला, इनाया। कायरव की नजरें सीधे उस तरफ घूमी जहां इनाया सोई थी, लेकिन अब वो जगह खाली थी। कायरव घबरा गया, तुरंत ही नजरें घुमाई तो ध्यान बेड के पास खड़ी इनाया पर गया।
इनाया, तुम ठीक हो? वहां क्या कर रही हो तुम? इनाया आंखों को भींचे शॉक्ड सी खड़ी थी। कायरव की चिंता भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया, आंखों को और भी कसके भींच लिया और खींचते हुए मन ही मन बोली, शिट। टू बी कंटिन्यूड।